नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। दो दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। ये यात्रा भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्षिक बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था। विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। इस बीच लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। भारत को वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। ये अंतर सरकारी संगठन पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना और बहाली का समर्थन करता और सहयोग देता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में सदस्य देशों की परिषद की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। भारत निवर्तमान अध्यक्ष स्विट्जरलैंड का स्थान लेगा। संस्थान ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट में इस चयन की जानकारी दी है। भारत वर्ष 2017 से ही अंतर सरकारी लोकतंत्र और निर्वाचन संस्थान का सदस्य रहा है। वायुसेना के विमान ने कल ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को बेली ब्रिज और 500 जल शुद्धिकरण किट पहुंचाए। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेली ब्रिज से चक्रवात दितवा के दौरान नष्ट हो गए सड़क संपर्क बहाल करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसमें मसौदा मतदाता सूचियों पर अपील की सुनवाई शुरू होने पर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने मांग की है कि ये कार्य केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में किया जाए जिससे निष्पक्षता बरती जा सके। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता वीरा और 10 महीने के उसके दो शावकों को आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर इन चीतों को श्योपुर के खुले वन में छोड़ेंगे। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव भव्यता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज पूर्णिमा की चांदनी में रण के धवल सौंदर्य का आनंद लेंगे। रण उत्सव कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आतिथ्य भाव का उत्सव है जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मौसम विभाग ने आज आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।